ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सब भक्तों का आशीर्वाद चाहता हूँ। गुरुदेव श्रील प्रभुपाद, आज हम श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंध से पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है हिरण्यकश्यपु के साधु के समान पुत्र प्रहलाद महाराज। प्रहलाद का वर्णन आ रहा है और आज हम सातवें स्कंध का पांचवां अध्याय है और श्लोक नंबर है 17। लोक 17।
दैत्येय चंदन वने जातो अयम कंटक द्रुमः यन्मूल उन्मूल परशो विष्णो नालायितार्भका। दैत्य दैत्य वंश के चंदन वने चंदन वन में जातः उत्पन्न अयम यह कंटक द्रुमा कंटीला वृक्ष यद जिसकी मूला जड़ों के उन मूला काटने में परशो जो कुल्हाड़ी के भांति है विष्णु भगवान विष्णु नालायिता हत्ता या भेंट अर्भक बालक। अनुवाद एवं तात्पर्य शिल ऐसी भक्तिवेदांत स्वयं प्रभुपाद द्वारा। यह धूर्त प्रहलाद चंदन के वन में कंटीले वृक्ष के समान प्रकट हुआ है। चंदन वृक्ष काटने के लिए कुल्हाड़ी की जरूरत होती है और कंटीले वृक्ष की लकड़ी ऐसे कुल्हाड़ी का हत्ता बनाने के लिए बहुत उपयुक्त होती है। भगवान विष्णु दैत्य वंश रूपी चंदन वन को काट गिराने के लिए कुल्हाड़ी के समान है और प्रहलाद उस कुल्हाड़ी का हत्ता बन गया, मतलब हैंडल बन गया। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा, सामान्यतः कंटीले वृक्ष मरुस्थल में उगते हैं, वे चंदन वन में नहीं उगते। किंतु शुक्र के ब्राह्मण पुत्र शंड और अमरक नामक ब्राह्मण ने दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के वंश की तुलना चंदन से की है और प्रहलाद महाराज की तुलना कठोर बलिष्ठ कंटीले वृक्ष से की है जिसमें कुल्हाड़ी का भेंट बनाया जाता है। उन्होंने भगवान विष्णु की तुलना कुल्हाड़ी से की है। अकेला कुल्हाड़ी कंटीले वृक्ष को नहीं काट सकता, इसके लिए कंटीले लकड़ी से बने हत्थे की आवश्यकता होती है। इस प्रकार उस कंटीले वृक्ष जैसे असुर सभ्यता को विष्णु भक्ति रूपी कुलाड़ी से खंड खंड किया जा सकता है। इस असुरिक सभ्यता रूपी कुलाड़ी का प्रहलाद महाराज जैसा कोई सदस्य भेंट करके भगवान विष्णु की सहायता कर सकता है। इस तरह असुरी सभ्यता का समूचा वन खंड खंड किया जा सकता है। ओम ज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं
श्री गुरोन् वैष्णवंश्च श्री रूपं सागर जातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमा ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनि गोर्द्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब एकत्रित वैष्णव का आशीर्वाद चाहता हूँ। वैष्णव के सामने क्लास देना ऐसा होता है जैसे गंगा का पानी लेके वापस गंगा को अर्पण करना, कि हम वैष्णव के आशीर्वाद से ही बोल सकते हैं। मुकम करोति वाचालम, गुरु आशीर्वाद वैष्णव आशीर्वाद से गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है, लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत पार कर सकता है, अंधा व्यक्ति आकाश के तारे देख सकता है। तो मेरी कोई पात्रता नहीं है, मुझे आदेश दिया गया, मैं थोड़ा प्रयास करूँगा। ये प्रसंग बहुत सुंदर चल रहा है नरसिंह भगवान की लीला का, क्योंकि अभी अगले सप्ताह नरसिंह चतुर्दशी है 25 तारीख को, और एक्चुअली अभी वर्तमान विश्व की स्थिति को देखकर नरसिंह भगवान से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ये जो पूरे विश्व में जो कोरोना फैला हुआ है, उसका सेकेंड वेव जो आया है, एक्चुअली पहले वेव से भी ज़्यादा खतरनाक है। और अभी भी भारत में तीन, श्रीनिवास प्रभु जी कल बता रहे थे कितने, 3-3.5 लाख केस अभी भी हो रहे हैं। तो एक्चुअली मैं सोच रहा था, पहली बार जब वेव आया था तब हम सुनते थे कोई दूर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कई जो हमारे परिचित हैं वो भी, भक्त भी हैं और कई अभक्त भी सब जा रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य है सबके लिए प्रार्थना करना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी प्रार्थना करने से शायद भगवान की इच्छा तो प्रबल है, लेकिन फिर भी ये प्रेम दिखाने का एक तरीका होता है। हम दूसरे भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं, अभक्तों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, तो इसे हम अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं। तो वास्तव में हर जीव भगवान का अंश है। तो मैं सोच रहा था, जैसे अभी मैं आज भक्तों से निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे वृंदावन में जो हॉस्पिस में जो हमारे एक भक्त हैं गौरंग सुंदर प्रभु, जो आई डॉक्टर हैं आँखों के, और उनके और एक भाई हैं वो भी आँखों के डॉक्टर हैं सिंगापुर में, आज सवेरे ही उनका कोविड के कारण देहांत हो गया। मेरे ख्याल से 45, ज़्यादा उम्र नहीं थी, 40-45। तो उनके लिए भी प्रार्थना करना। विष्णु माधव प्रभु जी के भी मामा थे आपके ना, मामा और मामा के लड़के दोनों ही एक हफ्ता पहले चले गए। तो ये हमारा कर्तव्य, और मैं हायर लेवल से सोच रहा था कि हर जीव हमारा भाई बहन है, क्योंकि सब कृष्णा के अंश हैं। तो हर रोज 3 लाख से ज़्यादा हमारे भाई बहन हैं जिनको कोविड पॉजिटिव हो रहा है, और कितने उसमें से सीरियस भी हो रहे हैं। तो ये समय हमें प्रार्थना ज़्यादा करनी चाहिए, और नरसिंह भगवान से विशेष करके। नरसिंह भगवान से विशेष करके, क्योंकि नरसिंह भगवान सारे विघ्नों को दूर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, नरसिंह भगवान का इसलिए महत्व है क्योंकि भक्ति में आने वाली जितने बाधाएं हैं वो भी नरसिंह भगवान दूर कर सकते। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बहुत सुंदर किताब लिखी है जिसमें बताते हैं कि हे नरसिंह भगवान, राधा गोविंद की सेवा में जो भी बाधाएं आ रहे हैं वो आप दूर करो। तो नरसिंह भगवान को विघ्न नाशक बताया गया कि भक्ति के मार्ग में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो सब दूर हो जाएं। जो भी, जैसे भगवान नरसिंहदेव ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु की छाती फाड़ दी, उसकी अंतड़ियाँ निकाल दी, वैसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे हृदय में भी जो काम, क्रोध, लोभ सब अनर्थ भरे हैं उन सबको निकाल दो, इसे भगवान राधा श्याम सुंदर की सेवा में शुद्ध भाव से कर सकूं। तो यहाँ पर इस अध्याय में देखा जा रहा है कि कैसे प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकशिपु, अल्टीमेटली वो भी वैष्णव हैं, जय विजय के अवतार हैं, लेकिन यहाँ पर लीला में वो एक असुर का रोल खेल रहे हैं। जैसे कोई ड्रामा होता है, हमारे यहाँ पे भक्त रामायण ड्रामा करते हैं या महाभारत या कृष्णा लीला पे, गौर लीला पर, तो कभी कभी ड्रामा में किसी व्यक्ति को असुर का रोल खेलना पड़ता है। हो सकता है वो असुर नहीं हो लेकिन उस समय उसको बनना पड़ता है। तो जय और विजय भी भगवान के ही पार्षद हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कैसे उनका जब पतन होता है तो वो विशाल असुर बन जाते हैं। एक बार किसी भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा कि मान लो मैं भी असुर की तरह व्यवहार करता हूँ, बहुत खराब व्यवहार करता हूँ, तो क्या भगवान आएंगे मेरे को मारने के लिए? तो प्रभुपाद जी बोले, नहीं, ऐसे छोटे मोटे असुर के लिए नहीं, भगवान को एक स्टैंडर्ड असुर चाहिए ना। तो भगवान को लड़ाई भी करनी है तो असुर थोड़ा पावरफुल ना, जैसे रावण कितना शक्तिशाली, हिरण्यकशिपु कितनी शक्तिशाली, तो उससे थोड़ा मैच में मजा भी आता है। अगर हाथी का चींटी से लड़ाई हो रहा है तो टीवी पर कोई नहीं देखेगा उसको, ये ना कि क्या लड़ाई हो रही हाथी और चींटी की। तो इसीलिए भगवान ही असुरों को भी शक्ति देते हैं। वास्तव में जब प्रहलाद महाराज से उसके पिताजी बोलते हैं, प्रहलाद कहाँ से आपको शक्ति मिल रही है, तो प्रहलाद बोलते हैं कि वो भगवान जो आपको शक्ति दे रहे हैं मुझे भी शक्ति दे रहे हैं। शक्ति का सोर्स वही है, जैसे वही इलेक्ट्रिकल पावर है, इससे कोई हीटर चला रहा है और अभी गर्मी का मौसम में कूलर जला रहे हैं, पावर वही है। तो वही भगवान की शक्ति है और कैसे उसका व्यक्ति उपयोग करता है उसके अनुसार उसका चरित्र हो जाता है। भगवद गीता में 16वें अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं देवी प्रवृत्ति और असुरी प्रवृत्ति, दो प्रकार के लोग हैं, देवी और असुरी। देवी प्रवृत्ति और असुरी प्रवृत्ति। देवी प्रवृत्ति मतलब जो भक्त हैं, जो भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए उत्सुक हैं, उनको देवी प्रवृत्ति बोला जाता है। और जो विष्णु भक्ति के विरोधी हैं या जो भगवान के विरोधक हैं उनको असुरी बोला जाता है। हालांकि जैसे प्रहलाद हैं वो असुर परिवार में हैं लेकिन चरित्र से देवी प्रवृत्ति। या रामायण में कौन सा उदाहरण है, एक भक्त जो असुर परिवार में, विभीषण का परिवार देखिए तो बड़ा, बाकी सब तो अलग हैं, रावण, कुंभकर्ण, उनके और दो भाई थे खर दूषण और बहन शूर्पणखा, रावण के अनुसार वो पांचों अच्छे थे लेकिन विभीषण थोड़ा अलग निकले। तो असुर परिवार में होकर भी वैष्णव हैं। ऐसे बलि महाराज भी, एक्चुअली बलि महाराज प्रहलाद के पुत्र, विरोचन के पुत्र हैं, ये बलि महाराज भी हैं असुर परिवार में लेकिन वो परम वैष्णव के महाजन में गिना जाता है। तो मतलब देखो कि 12 महाजन में से 2 महाजन ऐसे हैं जो असुर डायनेस्टी में है ना, 12 में से 2 यानी 6 में एक, ऑलमोस्ट 16.6%। तो फैमिली ट्रेडिशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक चैतन्य मंगल में बहुत सुंदर श्लोक है जो बताता है कि भगवत भक्ति के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जाति कृष्ण भक्ति जाति कर्म आदि नाही विचार, जाति कुल आदि विचार नहीं। अब देखेंगे कि हनुमान जी वानर परिवार में, भी हनुमान जी को भगवान राम के भक्तों में श्रेष्ठ माना जाता है। जनरली वानर कोई अच्छी योनि नहीं मानी जाती, नहीं हम किसी को ऐसे बोलते नहीं आप कितने सुंदर हो, बिल्कुल वानर की तरह लग रहे हो, तो बड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन जब हनुमान जी वानर परिवार में तो भक्तों में उत्तम माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो व्यक्ति की भक्ति महत्वपूर्ण है, चरित्र धन कुल ये विचार नहीं है। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि जाति दिनेर अधिक दया करे भगवान, पंडित कुली बड़े अभिमान। भगवान दीनों पर ज़्यादा दया करते हैं, जो पंडित हैं जो बहुत ज़्यादा धनशाली हैं उनको अभिमान हो जाता है और वो कृपा के पात्र नहीं बन पाते। तो एक बार तो प्रभुपाद लीला में एक बार एक ड्रामा किया गया था नरसिंह लीला का, और प्रभुपाद बाद में लेक्चर के बाद बोले कि आई लाइक द ड्रामा वेरी मच एस्पेशली मिस्टर हिरण्यकशिपु। प्रभुपाद जी बोले मुझे हिरण्यकशिपु का जो ड्रामा में जो रोल खेला था वो बहुत अच्छा लगा। जैसे हम ड्रामा के बाद हम तो जब सबसे मिलते हैं तो हम ये नहीं बोलते अरे ये असुर आ गया देखो, नहीं हम बोलते अरे ये तो वाह कितना अच्छा ड्रामा किया, आप बिल्कुल हिरण्यकशिपु की तरह लग रहे थे। लेकिन अंदर से भक्त हैं। तो यहाँ पे जय विजय भी रोल खेल रहे हैं और कई सारे, भगवान जब भी कुछ करते हैं तो एक तीर से बहुत सारे निशाने लगाते हैं। भगवान ये भी सिखा रहे हैं कि वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। जय विजय ने वैष्णव अपराध किया चार कुमारों के प्रति, यू नो, उनको जाने से रोका और उनका पतन हो गया। और भगवान एक तीर हमें भी दिखा रहे हैं कि कैसे जय विजय को भी मतलब कैसे जय विजय का उन्होंने ठीक से व्यवहार नहीं किया, दूसरी ओर कैसे हमें किसी को जज भी नहीं करना चाहिए। मतलब बाहर से देखें तो जय विजय को लग रहा था ये कौन से चार व्यक्ति आ रहे हैं, उनको जानते नहीं थे। तो भक्त को भी बाहर से हम जज नहीं कर सकते, जब बाहर से हम जज करते हैं ये भक्त जो है ड्रेस से देखते हैं, इसके कपड़े कैसे हैं, इसका बोलचाल कैसे है, इसकी प्रवचन की कला कैसी है, गाने की धुन कैसी है, तो ये बाहरी चीज़ें हैं। भक्ति का इससे कोई संबंध नहीं है। ये कर्मों के अनुसार किसी को अच्छी आवाज़ होती है, किसी को बोलने की कला होती है, किसी को मैनेजमेंट की कला होती है, कोई बहुत अमीर परिवार से होता है, कोई बहुत डिग्री प्राप्त करता है, लेकिन भक्ति का इससे कोई संबंध नहीं है। हम देखते हैं कि गौर लीला में एक एक्सट्रीम है पुंडरीक विद्यानिधि, जो बहुत बड़े परिवार से हैं, वो करोड़पति हैं, आराम से बैठे हैं सिल्क के सिंहासन के ऊपर, सिल्क के कपड़े पहने हैं और पाँच छः बारे हैं आलिशान से, और दूसरी ओर श्रीधर खोला बेचा हैं, इतने गरीब हैं कि उनके घर में पानी पड़ टपक रहा है बरसात में, उनके पास उतना धन नहीं है कि उसको रिपेयर करा सके। तो भगवान को कौन ज़्यादा प्रिय है? भगवान को दोनों प्रिय हैं, भगवान भेद नहीं करते। पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में चैतन्य महाप्रभु, तो पुंडरीक विद्यानिधि जब नवदीप आए उसके पहले ही भगवान बोलने लगे पुंडरीक माय बाप, पुंडरीक माय बाप, और सबने बोला कौन है पुंडरीक? पुंडरीक मतलब जनरल पुंडरीकाक्ष कमल नयन, लेकिन ये कौन है पुंडरीक? फिर महाप्रभु ने बताया पुंडरीक नाम के भक्त हैं, वो चाटीग्राम में रहते हैं, वो यहाँ पे भी आने वाले हैं। और पुंडरीक विद्यानिधि की भक्ति देखिए, वो इतने रिस्पेक्ट करते गंगा माता का, वो गंगा का दर्शन करने नहीं जाते दिन में, इतना उनका आदर था। वो सोचते थे ये लोग कुल्ला कर रहे हैं, अपना हाथ धो रहे हैं, पैर धो रहे हैं, थूक रहे हैं गंगा में, तो मैं ये अपमान। मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकता, इसीलिए वो गंगा का दर्शन रात में करते थे, जब कोई नहीं देख रहा तभी वो गंगा को दर्शन करते, प्रार्थना अर्पण करते, इतना उनका आदर था। तो एक और तो इतने अमीर हैं लेकिन इतना उनके अंदर भक्ति भाव भी है। और हम उस सब कहानी जानते हैं कि कैसे मुकुंद दत्त जब पुंडरीक विद्यानिधि के सामने वो श्लोक बोलते हैं आई अहो बकी यम स्तन काल कूटम, तब पुंडरीक विद्यानिधि के प्रेम के लक्षण प्रकट हो जाए। और दूसरी ओर श्रीधर खोला बेचा इतने गरीब हैं और चैतन्य महाप्रभु उनकी दुकान पर जा रहे हैं और उनसे मांग रहे हैं कि केले के पत्ते दो, क्या दाम है, जो भी दाम बोलते हैं महाप्रभु तो ये नहीं मैं आधा ही दूंगा। तो बोलते हैं प्रभु आप, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, थोड़ा है गंगा माता की सेवा में लगा रहे हैं। तो महाप्रभु गंगा, गंगा तो मेरे चरणों से आती है, शिव जी मेरे दास हैं, पार्वती मेरी दासी है। तो श्रीधर खोला बेचा को योग माया के कारण भक्त भगवान को पहचानते भी हैं नहीं भी पहचानते हैं, पहचानते हैं उनका जो रस है वो चलता रहता है साख्य रस दास्य रस वासी, लेकिन उनकी जो कृष्ण की जो ऐश्वर्य है उसको छिपाया जाता है। इसलिए भक्ति रसामृत में बताया गया कि कि जो ऐश्वर्य शीतल भक्ति है वो ज्यादा ऊंचे स्तर पे है। जैसे देवकी और यशोदा अगर हम दोनों को देखें तो देवकी माता भी माँ है, यशोदा माता भी माँ है, लेकिन यशोदा का प्रेम जो ज्यादा ऊंचे स्तर पर है, क्योंकि देवकी के पास जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, भगवान को जगदीश्वर समझ रहे हैं। जब भगवान प्रकट हुए जेल में तभी से उनका गुणगान कर रहे हैं, लेकिन यशोदा माता सोच रही कृष्ण मेरे लाला है। तो यहाँ पर श्रीधर को पता नहीं है कि कृष्ण कि ये चैतन्य महाप्रभु भगवान है। जब वो बोलते हैं तो गंगा मेरे चरणों से आ रही है, तो उनको लगता है तो अपमान हो गया। बोलते हैं विष्णु विष्णु क्या बोल रहे हो, जैसे छोटे बच्चे बड़े होते हैं तो ज्यादा अच्छा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, लेकिन आप तो और नटखट बन रहे हो। और बाद में हम जानते हैं कि महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु श्रीधर खोला बेचा को दर्शन दिलाते और श्रीधर को बोलते हैं श्रीधर वरदान मांगो। चैतन्य महाप्रभु उनको यही रूप दिखाते हैं, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम का रूप दिखाते हैं। और श्रीधर देख के बेहोश हो जाते हैं देख के बेहोश हो जाते हैं भगवान के रूप को। और महाप्रभु पूछते हैं आप वरदान मांगो, बोलते मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। श्रीधर मैं आपको एक गांव का राजा बना दूंगा, आपको इतना ऐश्वर्य दे दूंगा, आपको दुकान खोलने की जरूरत ही नहीं होगी। बोलते नहीं मुझे नहीं चाहिए। श्रीधर मैं आपको अष्ट सिद्धि दे दूंगा, अणिमा लघिमा प्राप्ति ईशित अवश्य, नहीं चाहिए मुझे। जनरली कभी कभी लगता है कि सिद्धि होती तो कितना अच्छा होता, नहीं मैं भी सोचता कई बार सिद्धि होती कितना अच्छा है, नहीं कैसे यहाँ बैठे बैठे ही महाप्रसाद मिल जाता हाथ करने से, जाने की भी जरूरत नहीं। कोई सिद्धि होती तो मुझे कहीं जाना है लघिमा उड़ के, यहाँ से मुझे बम्बई जाना है, प्लेन में जाने की जरूरत नहीं, उड़ के ही चले गए, बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन वास्तव में ये सिद्धियाँ जो हैं भक्ति में बाधक हैं, भक्त सिद्धियों को नहीं चाहता। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल या शांत, कृष्ण भक्त निष्काम, वो कुछ जो भक्त है वो कुछ चाहता ही नहीं है, वो बस संतुष्ट है भगवान की सेवा में। तो श्रीधर खोला बेचा मना कर देते सिद्धियों के लिए, अनंत भगवान को बोलते हैं भगवान आप शांत रहो। भगवान बोलते हैं मैं तो शांत हूँ लेकिन आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो श्रीधर क्या मांगते हैं, बस वो जो निमाई वो बालक जो मेरी दुकान पे आता था बार बार आता रहे। और चैतन्य महाप्रभु बोलते श्रीधर आपके ऐश्वर्य को मैं एक दिन दिखाऊंगा। एक दिन जब महाप्रभु चांद काजी का उद्धार करके आते हैं, चांद काजी का उद्धार करके आते हैं तो महाप्रभु प्यासे होते हैं, उनको प्यास लगी होती है। और श्रीधर के घर के पास एक पुराना लोटा था, इतना पुराना, उसमें होल बने हुए हैं, और अगर कोई चोर भी ले जाता तो अगले दिन वापस दे देता क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं थी अभी। लेकिन महाप्रभु वो पुराने लोटे से पानी पीने लगे और श्रीधर रोने लगे, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो। प्रभु हंस के बोले आज पहली बार मुझे कृष्ण भक्ति का अनुभव हो रहा है कि मैं भक्त के कोई दिव्य वस्तु से जल ग्रहण कर रहा हूँ। तो ये कॉन्ट्रास्ट है, एक बहुत गरीब भक्त बहुत अमीर भक्त। इसके पहले वाले श्लोकों में आपने सुना होगा कि कैसे प्रहलाद अपने पिताजी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पिताजी दो बार पूछते हैं सबसे अच्छी चीज़ क्या है आपने जो सीखा है उसमें। पहली बार तो पिता बोलते हैं पिताजी आप जैसे व्यक्ति को वृंदावन जाना चाहिए। अभी हमें कोई बोले वृंदावन जाना है, वृंदावन तो इतनी खुशी होती है, नहीं वृंदावन हमारा घर है, हम सब प्रार्थना करते हैं हम आजीवन वृंदावन रहें, है ना। ब्रजवास की हम आशीर्वाद मांगते हैं वैष्णवों से, ब्रजवासियों से, ब्रज में रहें। और प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को बोल रहे हैं वृंदावन चले जाओ, और वो इतने गुस्से हो जाते हैं, एक बदमाश है इसको ले जाओ, इसको गलत संग से बचाओ। गलत संग मतलब वैष्णवों का संग, हरिनाम का संग, जैसे हम बोलते हैं ना असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। उनका क्या है, सत्संग त्याग यही असुर व्यवहार, है ना। इनको वैष्णवों से बचा के रखो, मेरा बेटा जो है कंटेमिनेट नहीं हो जाए। चंद अमर को डांटने लगते हैं, तुमने क्या सिखा दिया मेरे बेटे को, हाँ ये कहाँ से, कोई पता नहीं कोई इस्कॉन डिवोटी से मिल गया था क्या, इसको क्या ये कंटेमिनेट हो गया कॉन्शियसनेस। तो सब कुछ रिलेटिव होता है इस मटेरियल वर्ल्ड में। या निशा सर्वभूतानी तस्य जागृति संयम, भौतिक व्यक्ति के लिए जो रात्रि है वो भक्तों के लिए दिन है, और भक्तों के लिए रात्रि है वो संसारी व्यक्ति के लिए दिन है। तो भक्त के लिए ये इंद्रिय तृप्ति धन मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब त्यजनीय है। भक्त भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के प्रार्थना, न धनम न जन्म न सुंदरी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सब नहीं चाहिए, ऑब्स्टिकल्स हैं, मुझे खाली आपकी भक्ति चाहिए, शुद्ध भक्ति। लेकिन कभी कभी भगवान कुछ दे देते हैं ऐश्वर्य, तो भगवान की सेवा में उपयोग किया जा सकता। तो प्रहलाद महाराज जब इस तरह से बात करते हैं तब उसके पिताजी इतने गुस्से होते हैं, बोलते हैं कि आप प्रहलाद को हमारे परिवार में हैं लेकिन हमारा नाम खराब कर रहे, इतने असुर कुल को नष्ट कर दिया है। और फिर आज का श्लोक आता है जिसमें बता रहे हैं कि धूर्त प्रहलाद चंदन के वन में कंटीले वृक्ष के समान है। देखिए सब कुछ रिलेटिव है। हिरण्यकशिपु क्या बोल रहा है इस श्लोक में कि ये जो असुर परिवार है ये बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें प्रहलाद जो है वो कंटीला वृक्ष के समान है। और भगवान विष्णु ये कुल्हाड़ी है जो असुर वंश को नाश करने के लिए, और प्रहलाद उसका हैंडल बना हुआ है। मतलब इनडायरेक्ट लिखने जाए तो हिरण्यकशिपु को पता चल गया है कि हमारे असुर वंश का अंत होने ही वाला है। यन मूलन उन्मूलन, यन मूलन अनमूलम, मतलब कि जड़ से काटने वाले। प्रभुपाद कितना सुंदर कनेक्ट करते हैं आज के श्लोक को। प्रभुपाद कनेक्ट करके बोल रहे हैं कि ये वर्तमान सभ्यता जो है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, वो भी असुरी प्रवृत्ति है। अब प्रहलाद महाराज जैसा कोई मेंबर जो है वो इस असुरी सभ्यता को नष्ट कर सकता है। तो हम इसको प्रभुपाद से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि आज जो असुरी सभ्यता फैल गई है सब जगह पर, उसको शिल प्रभुपाद प्रहलाद महाराज के प्रतिनिधि हैं। और प्रभुपाद जी की शिक्षाएं, प्रभुपाद जी की पुस्तकें, प्रभुपाद जी का वाणी जो है वो उस कुल्हाड़ी की तरह है जो असुर सभ्यता को नष्ट कर सकते। मिसगाइडेड सिविलाइजेशन, प्रभुपाद जी बोलते हैं अभी ये सभ्यता ऐसी है कि गलत दिशा में जा रही है। इसलिए शिल प्रभुपाद जी स्कूल और कॉलेज में प्रचार के लिए बहुत जोर देते थे, क्योंकि यहाँ से व्यक्ति की जो चेतना शुरुआत से अगर बदली जाए तो फिर बहुत आसान हो जाता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे हमारे कई मंदिरों में प्रहलाद स्कूल होता है, बचपन में गुरुकुल होते हैं, तो बचपन से बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो कृष्ण भावनामृत में प्रगति आसानी से कर सके। इस तरह से प्रहलाद महाराज को वो बदलने का प्रयास करते हैं, उसे पूछते हैं कि आपको कृष्ण भक्ति कहाँ से मिली। प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर बताते हैं, मतिर्न कृष्ण परतो स्वतो वा मिथो पद्यते ग्रह वृतानम अदांत गोभी विचतम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वना। ये जो परतो स्वतो वा, अगर अपने आप से दूसरे से कृष्ण भक्ति करनी, लेकिन बाद में सीक्रेट बताते हैं, महियाश पद रजोभिषेकम, महात्माओं के चरणों की धूली से, महात्माओं की आज्ञा से। और चैतन्य चरितामृत में इसी श्लोक को चैतन्य महापुरुष सनातन गोस्वामी को बताते हैं, साधु संग सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। कृष्ण भक्ति के प्राप्ति के लिए, कृष्ण भक्ति के प्रगति के लिए और कृष्ण भक्ति के लास्ट स्टेज के लिए साधु संग अत्यंत आवश्यक है। और साधु का मतलब क्या है? साधु मतलब सिर्फ सन्यासी ब्रह्मचारी या बहुत कोई बड़े महान भक्त नहीं, जो भी व्यक्ति ने कृष्ण भक्ति को गंभीरता से ग्रहण किया गया उसको साधु माना गया। जिसने भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिसने इस नाम जप की विधि को सर्वस्व मान लिया है, जिसने जान लिया है कि हरि नाम के सिवाय कोई चारा नहीं है, वो व्यक्ति साधु है। और ऐसे भक्त के संग से हम पवित्र बन सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को इस संदर्भ में कहानी बताते हैं मृगरारी की। मृगरारी एक क्रूर शिकारी था जो बिना कारण जानवरों पर तीर चलाकर उनको घायल करता था। अब प्रयाग में नारद मुनि की कृपा मिलती है उनको। एक तो होता है जानवरों को मारना, लेकिन मृगरारी इतना क्रूर था कि वो जानवरों के ऊपर ऐसे मारता था कि वो मरे भी नहीं और तड़पते रहे। प्रॉपर लिखते हैं जगह पर कि जो तमोगुण में व्यक्ति होता है उसको दूसरों की पीड़ा में आनंद होता है, और वैष्णव जो है वो पर दुख दुखी होता है। सच्चे वैष्णव जो है वो किसी चींटी को भी तकलीफ नहीं देना चाहते। और हम देखते हैं मृगरारी में पूरा कॉन्ट्रास्ट कैसे होता है, मृगरारी नारद मुनि के मिलने से पहले और मृगरारी नारद मुनि से मिलने के बाद, पूरा 180 डिग्रीज पूरा परिवर्तन हो जाता है। कहाँ वो जानवरों को तड़पा रहे थे, जब नारद मुनि कृपा से कुछ जानवर बच गए तो उनको गुस्सा आ रहा था कि नारद मुनि ने उनको समझाया कि देखो ये सब प्राणी जिसको आप हत्या कर रहे हो ये सब आपका बदला लेंगे। और तब मृगराजी की आंखें खुली, ने पूछा मेरा कैसे उद्धार कर सकते। नारद मुनि ने बताया पहली बात तो आप धनुष्य बाण फेंक दो, इसका मतलब सब अपना ये बुरे कार्यों को त्याग दो, बस अब कुटिया बना के पवित्र गंगा नदी के किनारे बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखते हैं कि पवित्र स्थान में भगवान का नाम लेने का फल ज़्यादा होता है, स्पेशली वृंदावन, मायापुर, प्रयाग, जगन्नाथपुरी, प्रभुपाद इन स्थानों के बारे में लिखते हैं। तो हम सब भक्तों कितना सौभाग्य है कि हम ब्रज धाम में हैं, यहाँ पर एक क्षण भी बिताना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अगर कोई चॉइस दी जाए स्वर्ग में सबसे ऊंचा इंद्र का आसन मिलना और वृंदावन में एक घास का तिनका बनना, तो वृंदावन का एक घास का तिनका बनना ज़्यादा हजारों हजारों गुना ज़्यादा महान स्थिति है। उद्धव जी जो भगवान के पार्षद हैं, जो कृष्ण के भाई के समान है, मतलब साख्य रस में है, वो उद्धव जी भी जब गोपियों के प्रेम को देखते हैं, एक्चुअली उद्धव जी आए थे इसलिए क्योंकि ब्रज की गोपियों को संदेश लेकर वो समझाने के लिए, लेकिन जब वो देखते हैं कि कैसे श्रीमती राधा रानी और गोपियों का प्रेम की पराकाष्ठा, कैसे वो कृष्ण के लिए रो रहे हैं। साधारण व्यक्ति कोई रोता है तो बोलते मत रो, क्यों रो रहे हो, कोई रिश्तेदार की मृत्यु हो गई, कोई बात नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, शरीर की मृत्यु होती है। कोई रोता है कोई चीज़ के अंदर, कोई बात नहीं, नई चीज़ मिल जाएगी। लेकिन जब कृष्ण के लिए रोता है उसका क्या कहना, उसको क्या कहा जा सकता है कि और रो। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि टीयर्स आर दी परफेक्शन, आंखों में आंसू जब भगवान के लिए कोई बहाता है तो भक्ति की पूर्णता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि वृंदावन में जो बछड़े हैं गाय हैं वो भी कृष्ण के लिए रोते हैं। तो ये जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हमारी अभिलाषा होनी चाहिए कि वो दिन कब आएगा जब हम शुद्ध नाम लेंगे। हमारे पूर्वज आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं ऐसे, कबे हबे बोलो से दिन अमार, अपराध गुचि शुद्ध नामे रुचि, कृपा बल हबे हृदय संचार। कि कब वो दिन आएगा जब मेरे अपराध दूर होंगे, शुद्ध नामे रुचि आएगी। कोरिते श्री कृष्ण नाम उच्चारण पुलकित देह गदगद वचन, कब मैं एक्सेसी में आके भगवान को पुकारूंगा, हे नंद नंदन, हे राधे ब्रज देवी के च ललिते, हे नंद सुनो कुता। हमारे जो ब्रज के जो गोस्वामी हैं श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनका उनकी कॉन्शियसनेस इस प्रकार से है कि विरह में कृष्ण को याद कर रहे हैं। नारद मुनि के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने से मृगरारी का इतना परिवर्तन हो जाता है, कई लोग आकर उनको जो आवश्यकताएं सब पूरी करते हैं। और एक दिन नारद मुनि और पर्वत मुनि आ रहे थे और मृगरारी अपने गुरु महाराज को प्रणाम करने गए, ऐसे प्रणाम करने गए देखा यहाँ पे कोई चींटियाँ हैं, तो सोचने लगे ये चींटियाँ हैं, इनको कष्ट होगा, इनकी मृत्यु हो सकती है, तो रुक गए और बड़े सावधानी पूर्वक उनको हटाने लगे, फिर वो प्रणाम कर। ये कितना परिवर्तन है, कहाँ पर वो व्यक्ति जानबूझकर तड़पा रहा था और अब वो एक चींटी को भी कष्ट नहीं देना चाहता। हमारे एक एग्जाम्पल है हमारे प्रभुपाद जी की लीला में, पीटर बुरवाश, नाम सुने प्रभुपाद जी के, उन्होंने ऑफिशियली दीक्षा नहीं ली लेकिन प्रभुपाद जी की बहुत कृपा मिली उनको, प्रभुपाद जी को मैनेजमेंट संबंधित कई ज्ञान दिया था। तो वो एक टेनिस प्लेयर थे, तो जब वो एक टेनिस गेम खेल रहे थे तो ऐसा था टेनिस गेम जो है वो बहुत टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है और सब देख रहे हैं, और वो सामने वाले जिस व्यक्ति के साथ खेल रहे हैं तो अभी लास्ट पूरे मैच का लास्ट गेम, लास्ट सेट का लास्ट पॉइंट है, जो ये पॉइंट जीतेगा वो विजयी होगा, उसको मतलब से लाखों लाखों डॉलर मिल जाएंगे। और अब इसके विरोधी पक्ष वाले बॉल फेंकने वाले इनको जवाब देने के लिए एक पर्टिकुलर स्थान पर रहना है जो अनुकूल है, वहीं पर हैं, और जैसे ही वो बॉल आने का समय आता है अचानक पता नहीं उनको क्या लगा वो वहाँ से 5 फीट थोड़ा साइड में हट गए। मतलब सब समझ गए, अरे ये हट गए तो अब इनकी पराजय निश्चय है। लेकिन किसी को समझ में क्यों हटे, और जैसे हटे और जब बॉल सामने आई तो उन्होंने प्रयास किया जवाब देने का, लेकिन वो चूक गए, वो हार गए और हजारों लाखों डॉलर जो मिलने थे वो उनको नहीं मिले। और सब उनसे पूछ रहे थे कि क्या कारण है, आपको पता था कि यहाँ पर खड़े रहना है, फिर आप गलत जगह पर क्यों खड़े थे। उन्हें किसी को बताया नहीं, खाली भक्तों को बताया कि जहाँ पर मुझे खड़ा होना था वहाँ पर कुछ छींटियाँ मैंने देखी, कुछ छींटी थे, अगर मैं वहीं पर खड़ा रहता तो उनकी मृत्यु हो जाती थी। मैंने सोचा कि मैं प्रभुपाद जी की शिक्षाओं में पढ़ा है कि किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना है, तो चाहे मुझे लाखों रुपए का नुकसान हो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को मैं कष्ट नहीं दूंगा। तो हम देख सकते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का फल, कि भक्त कितने कॉन्शियस होते हैं। एक वैष्णव का लक्षण है कि वो हमेशा हर जीव में कृष्ण को देखते हैं। जो भक्त एडवांस होता है भक्ति में, वो देखता है कि सबके हृदय में कृष्ण, सबके हृदय में कृष्ण, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु ज्योतिष्ठते। लेकिन ये सब चेतना कैसे आती है, ये सब प्रहलाद महाराज इसके बाद जब उनके पिताजी फिर से पूछते हैं तब वो बताते हैं 23वें श्लोक में, आज के 5 दिन बाद वो आएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास। प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को भी उपदेश कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज शत्रु और मित्र में भेद नहीं करते, वो सबको वही ज्ञान दे रहे हैं। जब दिन के समय अपने मित्रों को टाइम मिलता है उनको भगवत भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं, जब उनके पिताजी पूछ रहे हैं कि क्या बेस्ट चीज़ है, उनको ही बोल रहे हैं वृंदावन जाओ श्रवण कीर्तन करो। तो कंक्लूजन में मैं एक भाग पढ़ना चाहूँगा जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु ये श्लोक है नवविद्या भक्ति का। इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर करीब 10 पेज का तात्पर्य दिया है, और हर एक जो आइटम है भक्ति के, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम, हर एक के ऊपर टीका लिखी है। तो इसमें जो कीर्तन है, जो 23वें श्लोक में कीर्तन है, कीर्तन का मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं एक तो है कि मृदंग करताल के साथ कीर्तन, और दूसरा माला पर हल्के स्वर में जप करना। तो कीर्तन के बारे में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पवित्र नाम का कीर्तन के बारे में कह रहे हैं कि क्या चेतना होनी चाहिए। नारद मुनि भागवत में कहते हैं कि मैं भगवान का नाम गाते हुए बिना लज्जा के विष्णु भ्रमण करने लगा। तो प्रथम स्कंद में नारद मुनि की कथा आती है कैसे वो भ्रमण करने लगे। और चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में क्या बोलते हैं, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु न। प्रभुपाद जी श्लोक को कोट कर रहे हैं कि भगवान का नाम कीर्तन करने के लिए ये योग्यता क्या है, अपने आप को बहुत तुच्छ, एक घास के तिनके से भी छोटा मानना। घास के तिनके पे कोई लोग पैर रख देते हैं, थूक देते हैं, लेकिन वो विरोध नहीं करता। और दूसरा पॉइंट, तरोर एव सहिष्णु न, पेड़ के समान सहनशील होना। शिला प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम कहीं पर भी ले सकता है। स्पेशली प्रभुपाद 4 अयोग्यता बताते हैं, किसी का शरीर अक्षम हो, मतलब बॉडीली डिजीज हो या कमजोर हो, दूसरा अगर कोई दूसरों की तुलना में नीच है, भौतिक योग्यता से रहित है और पुण्य कर्म नहीं भी किए हैं। भगवान का नाम लेने के लिए कोई पुण्य कर्म की जरूरत ही नहीं है, बस किसी तरह से भगवान का नाम लेना है। आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए जन्म, शिक्षा, सुंदर धन, बल्कि ये ऑब्स्टेकल हो जाते हैं। महारानी कुंती बोलती है बाधाएं बन जाती हैं। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीवीर एदमान मदप उमान, कुंती महारानी कहते हैं ऊंचे परिवार में जन्म लेना, बहुत धन प्राप्त करना, ये बाधाएं हैं कृष्ण भक्ति के लिए। त्वम अकिंचन गोचर, तप धन दान क्रिया ये सब संभव नहीं है और करने की आवश्यकता भी नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर ने इसके बारे में लिखा है, नहीं नाम सम पुण्य, नामैव परम मुक्ति नामैव परम भक्ति। कि नाम के समान कोई पुण्य नहीं है, नाम के समान कोई व्रत नहीं है, नाम के समान कोई तपस्या नहीं है। और एक श्लोक कोट करते हैं पुराणों से, अगर कोई 1 लाख गाय भी दान करता है, जो गायों को बहुत सजाया गया है, उनके सिंह में सोना लगाया गया, और दूसरी ओर कोई एक बार किसी को हरि नाम का अवसर देता है सुनने का या बोलने का, तो हरि नाम का दान है उसका लाभ ज़्यादा है, करोड़ लाखों लाखों गाय देने से भी ज़्यादा। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर वो श्लोक कोट कर रहे हैं, बहुत फेमस, हरे नाम कीर्तनादेव कृष्ण से, दो श्लोक बता रहे हैं। इसके बाद लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद बताते हैं कि 10 अपराध से बचना चाहिए, और बहुत डिटेल में 10 अपराध बताने के बाद अंत में लिखते हैं कि इन अपराधों के शमन का कोई उपाय नहीं है, न जानते हुए अपराध हो ही जाते हैं। तो प्रभुपाद सीक्रेट बताते हैं, एक ही तरीका है अपराध से मुक्त होने का। यह संस्तुति की जाती है कि नाम के चरणों में अपराधी 24 घंटे नाम कीर्तन करता रहे, कॉन्स्टेंट चैंटिंग, हमेशा गाना। फिर बोले प्रभु जी कैसे, तो हमारी सेवा है, प्रैक्टिकल जिम्मेदारी है, अब माला पे 16 माला करना ही है, लेकिन मन में हर समय कृष्ण को याद कर, कृष्ण नाम से ऐसे अटैचमेंट होना चाहिए, ऐसे आसक्ति हो जाए कि हम शुईते खाईते बुशीते यथा तथा नाम लय। चैतन्य भागवत में कहा गया कि सोते हुए उठते हुए खाते हुए जो हमेशा गा रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा व्यक्ति जो हर समय भगवान का नाम ले रहे उसको जीवन की परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। श्रील प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि 24 घंटे नाम लेने से धीरे धीरे दिव्य पद की प्राप्ति होती है, और प्रभुपाद यहाँ पे दो श्लोक बोल रहे हैं कि नाम जप से अपराध मुक्त होने के लिए, जब नाम जप होने के बाद हम भगवान के चरणों में प्रणाम करें, और दो श्लोक प्रभुपाद जी बताते हैं। एक है अई मुक्त कूलेर उपस्यमानम, ये रूप गोस्वामी के नामाष्टक से है ये एक श्लोक गाना, और दूसरा निवृत्त तर्शेर उपगीयमाना भव औषधि श्रोत मनोभिरामा का उत्तम श्लोक गुना अनुवाद। तो प्रभुपाद बोलते हैं भगवान के चरणों पर किए हुए अपराध से मुक्त होने के लिए ये प्रार्थना करना चाहिए, ये नाम के महिमा की स्तुति से नामाष्टक है, और भी कई सारे नाम के गुणगान के श्लोक हैं। प्रभुपाद जी का एक किताब है श्री नामामृत, जिसमें प्रभुपाद जी जो भी नाम के बारे में बोला है वो एकत्रित है, कलेक्टिव किया। तो इन सब चीज़ों को सुनने से नाम में रुचि बढ़ती है, नाम में टेस्ट कैसे आएगा, हमेशा नाम के बारे में सुनना, नाम की महिमा और भक्तों के संगति में नाम लेना। चलो प्रभुपाद जी बोलते हैं शराबी कैसे बनता है कोई व्यक्ति, शायद आपको उत्तर नहीं मालूम होगा क्योंकि आप तो शुरू से ही चार नियम पालन कर रहे हैं, लेकिन जनरली कोई शराबियों के संग में रहेगा तो शराबी बन जाए। इसलिए वैष्णव संग बहुत लाभकारी है कि हम मिलकर नाम रस का आस्वादन करें, परम दृष्टिमा निवर्तते, और तभी संभव है कि हम विषयों के जाल से मुक्त हो सकते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर शिवजी के बारे में बता रहे हैं, दक्ष और शिवजी का जब विवाद होता है, प्रजापति दक्ष अपराध करते हैं शिवजी के प्रति, ये हरिद्वार के पास कनखल में लीला है। बाद में दक्ष शिवजी का गुणगान करते हैं और क्या कहते हैं कि हे शिवजी, मैं आपकी महिमा से अपरिचित था, भरी सभा में मैंने आपके प्रति अपराध किया, किंतु आप इतने कृपालु हो कि आपने मेरे अपराध को नहीं माना, जबकि मैं आप पर दोषारोपण के फलस्वरूप नीचे गिर गया तो आपने कृपा चितवन से मुझे बचा लिया, इसीलिए आप बहुत महान हैं, कृपया मुझे क्षमा करिए और अपने उच्च गुणों से संतुष्ट रहें। तो ये जो प्रेयर्स हैं, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं वन शुड चैंट इन द मूड ऑफ रिपेंटेंस, भगवान का नाम लेना है तो एक पश्चाताप की भावना से कि कृष्ण मैं आपको कई जन्मों से आपसे बिछुड़ा हुआ हूँ, मैं फिर से आपके संपर्क में आना चाहता हूँ। अई नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विषय में भवम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्त्य। हे नंद नंदन कृष्ण, मैं भवसागर में गिरा हूँ बहुत जन्मों से, कृपया मुझे बाहर निकालिए। तो इसे नाम जब की शुरुआत में या अंत में जब हम प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं तो वो भगवान को और ज़्यादा प्रिय बन जाता है, और फिर नाम जप एक आनंद उत्सव बन जाता है। नाम जप जो है एक हमें खुशी होती है कि भगवान के नाम का आश्रय लेना, जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब मैं दो अक्षर बोलता हूँ कृष्णा तो मेरी इच्छा होती है कि मेरे पास लाखों लाखों कान हो, जब ये नाम मेरे हृदय में जब मेरे नाम जीवा पर आता है तो इच्छा होती है लाखों लाखों जीवा हो, और जब नाम मेरे हृदय में प्रवेश करता है तो वो मेरे को मेरी इंद्रियां स्तब्ध हो जाती हैं। तो ये हमारा एस्पिरेशन है जो भगवान गुरुदेव की कृपा से कभी पूरा होगा, और तब अपने आप हमारे जो हिरण्यकशिपु की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति जो हमारे हृदय में है वो नष्ट हो जाती है और प्रहलाद जैसे गुण प्रकट हो जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वे गुण समासतः सुरः। जब किसी के अंदर भगवान के भक्ति का उदय होता है तो सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। और हरा व भक्तस्य कुतो महत्गुणा, जब भगवान हरि का भक्त नहीं है उसके अंदर अगर कोई लग भी रहे कोई गुण है तो सच्चे गुण नहीं है। सच्चे गुण जो हैं वो वैष्णव के ही होते हैं। कई बार मन में आता है कि बाहर के लोग दिखने में व्यवहार बहुत अच्छा कर रहे हैं, मीठा बोल रहे हैं, लेकिन वो बाहरी चीज़ है। भक्त का जो हृदय है जो भगवान की सेवा में लगा है, चाहे बाहर से उसके बोलने का ढंग थोड़ा कठोर भी हो, क्योंकि कई बार सेवा के लिए थोड़ा कठोरता से बोलना भी पड़ता है, तो भी वो भक्त की इंटेंशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो भक्त जो मोटिवेट कर रहा है जिनको भक्ति में आगे बढ़ा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे बोलते हैं साधु का स्वभाव होता है कभी कभी एकदम कोमल होता है जैसे कि एक पुष्प के समान, और कभी कभी कठोर होता है एक वज्र के समान। लेकिन दोनों केस में साधु सबके कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कभी कभी एकदम पुष्प के समान है, और कभी कभी प्रभुपाद जी देखते हैं कि अगर कोई सेवा ठीक से नहीं हो रही तो प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं। तो वैष्णव को जानना चाहिए इसी गुण से कि वो कृष्ण के शरणम, कृष्ण की शरण में आ गए। जिसने स्वीकार कर लिया कि कृष्ण मेरे प्रभु हैं, मैं उनका सेवक हूँ, आई एम सिंपली अ सर्वेंट, मैं सिर्फ भगवान का सेवक हूँ, तो वो व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो मैं सब भक्तों से आशीर्वाद मांगता हूँ कि आप सब भक्त मेरे पर दया करें और मैं हरि नाम शुद्ध रूप से ले सकूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।